ओके, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 4। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः त्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। बहुत समझता हूँ कि एकदम स्पष्ट है अर्थ क्या है इसका। यजन्ते सात्विका देवान, जो लोग सात्विक हैं वे देवताओं का यजन करते हैं। स्पष्ट। यक्ष रक्षांसी राजसह, जो राक्षस हैं जो और यक्ष हैं उनकी पूजा करते हैं जो राजसिक लोग होते हैं। प्रेत भूत गणांश च अन्य, अन्हा भूत प्रेत और अन्यों की पूजा कौन करते हैं, जो तामसिक। एकदम स्पष्ट है अर्थ, ठीक है। सतगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। पहले हम टीका को देखते हैं। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार की श्रद्धा से युक्त होता है वह विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगता है। हर व्यक्ति कार्य के पीछे एक बहुत सूक्ष्म बात है, उस कार्य को करने में उसको कुछ टेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो और इस कारण से वह उस कार्य को करने के लिए बहुत उत्साहित रहता है। ये बात आप समझ रहे हैं। जिस व्यक्ति को जैसी श्रद्धा होगी उसको उस प्रकार के कार्य करने बहुत अच्छे लगेंगे और उसी प्रकार की पूजा से प्रति वह आकर्षित भी होगा। इसीलिए उनके कार्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन लोग के जो रिचुअल्स होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये देख पाते हैं आपको, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि जो अपने पूर्व के संस्कारों के कारण एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा से युक्त होते हैं वह सात्विक देवताओं की, जैसे कि वसु इत्यादि होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पिछले जन्मों में उन्हें सात्विक गुणों का संग किया है तब उनकी मति जो है देवताओं की उपासना में लगेगी। जैसे अगर आपको याद हो महाराज बोलते हैं जो लोग सतलोक देवलोक से जगत में आते हैं वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि ऐसे लोगों का संग कर रहे थे, और जो लोग नरक से आते हैं वो हमेशा देवताओं की उपहास करते हैं कि पूजा करने की क्या जरूरत है। तो अभी देख रहे हैं इसमें एक मुख्य बात आप क्या देख रहे हो, उसमें ये देख रहे हो कि इनकी श्रद्धा जो है वो शास्त्रिक नहीं है, वह पूर्व के किए गए संघ के अनुसार। ये बात हमने पहले भी रिपीट करी थी, फिर से इन बातों को सामने लेके आ रहे हैं। शास्त्र के अनुसार पूजा नहीं कर रहे, पूर्व के किए गए संघ के अनुसार पूजा कर रहे, ठीक है, ओके। और इसमें यही बात वो बोल भी रहे, रुद्र और वसु इत्यादि देवता हो सकते हैं। जो लोग राजसिक हैं वह रक्ष यक्ष राक्षस कुबेर और नैरित्ति नाम के देवताओं की पूजा करते हैं। किसी भक्त की यक्षों से लड़ाई होती है, किसी याद है? ध्रुव महाराज, तो उसकी ऐसे लोग वो पूजा करते हैं। और जो तामसिक लोग हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। पर यहां तक कि प्रेतों के बारे में बता रहे हैं, प्रेत क्या होते सुनना चाहेंगे आप लोग? इसमें लिखा है प्रेत होते हैं वह पतित ब्राह्मण जो कि भूत का, मतलब उनको सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो गया है लेकिन वो अपने जब ब्राह्मण थे तो पतित हो गए थे तो उसको प्रेत कहते हैं। और वह उलामुख कट 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 और पूतना के रूप में रहते हैं। ये मनु के अनुसार है, इसे एक इंफॉर्मेशन के लिए किस प्रकार से भूत प्रेत होते हैं। इसलिए कोई सोचता है कि ये सोचना नहीं चाहिए कि आप मानते हैं क्या नहीं मानते, मनु बता रहे हैं और भगवान बता रहे हैं। गीता में कुछ बोल रहे थे आप, माइक दीजिए, माइक दीजिए।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि शास्त्र बिना पढ़े अपने श्रद्धा के अनुसार वो देवताओं की पूजा कर रहा है। अब मान लीजिए कोई शास्त्र पढ़ लिया और उसमें जैसे वसुओं की पूजा लिखी गई है तो वो पढ़ के किया और ये श्रद्धा से क्या, तो अंतर क्या है?
अंतर ये हो जाएगा, बहुत अंतर है। देखिए शास्त्र की विधि के अनुसार अगर वो कार्य करेगा तो उसको वो भी कार्य करने पड़ेंगे जो उसको अच्छे नहीं लगेंगे। विधि मतलब ये नहीं है कि मुझे जो अच्छा लगता है बस मैं वही स्वीकार करूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत घोर बात बोल रहा हूँ, घोर इसको फिलोसफी को आप जानते हो कि मान लीजिए कोई काली जी की पूजा करके उनको मांस चढ़ाना चाहता है तो उसे अमावस्या के दिन खुद बकरे को लाना पड़ता है, वो काटना पड़ता है, बहुत सारे मंत्र बोलने होते हैं, इसे पता है ना बात। अब अगर अपने मन से बनाए तो क्या होगा, फोटो लगाए काली जी के रोज करेगा। तो इस प्रकार से अगर वो विधि का पालन करता है तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर विधि का पालन नहीं करेगा तो शुद्ध नहीं होगा। इस चीज को आचार्य भी समझाएंगे कि अगर विधि का पालन नहीं करते हैं तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। हमने पहले ही पढ़ लिया था यह शास्त्र विधि मस्त्र ज वर्तते काम कारक। लेकिन कदाचित आप रहस्य खुलवा दे रहे हैं पहले, लेकिन अभी मैं बताऊंगा क्या बात हो रही कि कदाचित वो भक्तों का संग प्राप्त हो गया, शास्त्र की बात माने लग गया, तो फिर वह शुद्ध होने लग जाएगा। मैं इसको भी बस दो ही मिनट पर समझाने वाला हूं, ठीक है। प्रेत और पिशाच भी एक प्रकार के भूत होते हैं उनको, और चा भी मतलब होता है कि वो इसमें बोल रहा है कि सात प्रकार की माँ होती हैं ब्राह्मणी वैष्णवी महेश्वरी कुमारी वाराही इंद्राणी और चमुंडी। ये सब इंफॉर्मेशन के लिए कि इनकी पूजा करने वाले लोग जो है सब तामसिक लोक में आ गए। तो तीन प्रकार की श्रद्धा है जो उनके विभिन्न स्वभाव के अनुसार होती है, जो उनके सत्व के अनुसार होती है, और उसके अनुसार वह शास्त्रों की बात छोड़ करके वह पूजा करते हैं। अब लास्ट लाइन बोल रहे हैं जो आपकी बात का उत्तर हो जाएगा, वो बोल रहे हैं कि यदि वे अपने स्वभाव को जीतते हैं। कहीं आपको याद आ रहा है एक बार एक वृंदावन चंद्र प्रभु बता रहे थे स्वभाव विजयम, याद आ रहा है कुछ? मैं क्लास में था, वो बता रहे थे कि अपने स्वभाव को विजय प्राप्त करना ये असली शौर्य है। ये बड़ी गंभीर बात है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है कई जन्मों का, लेकिन स्वभाव पे विजय कैसे प्राप्त करेंगे?
संग के
यहां लिखा हुआ है, अगर वह उन लोगों का संग करते हैं जो वैदिक नियमों का पालन करते हैं तब वह अपने स्वभाव को जीत सकते हैं। यानी कि ऐसे लोगों के संग संभावना है कि अगर वो वैदिक नियमों का पालन करने वालों का संग करें तो फिर वह अपने स्वभाव के अनुसार इसकी पूजा कर लेते, छोड़ करके भगवान की पूजा करना चालू कर देते हैं। ये बात स्पष्ट है, आप देखो अपने प्रचार में, या फिर आप में से कुछ लोग, चलिए प्रश्न कर लेते हैं, आप में से कितने लोग भगवान कृष्ण के अलावा किसी की पूजा करते थे? आप किनकी करते थे? दुर्गा जी की करते थे। और आप
में जानता भी नहीं था।
जानते भी नहीं थे। वेरी गुड। अब आप इंटरेस्टिंग है, हमारे सामने ही प्रभु जी एग्जाम्पल है। बताइए आप दुर्गा जी की पूजा, माइक दीजिए, दुर्गा जी की पूजा क्यों करते थे? Yes.
घर में माँ यही करते थे और इसके अलावा मुझे पता भी नहीं था, घर में मूर्ति भी यही थी।
बिल्कुल परफेक्ट। अब आपकी माता जी क्यों करती थी?
अब उनको भी पता शायद नहीं होगा या
अब आप देख रहे हैं कि और क्या विधि है दुर्गा जी की पूजा करने की,
जो वो करती थे वो मैं फॉलो कर रहा था।
एकदम देख रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि प्रभु जी खुद बोल रहे हैं कि दुर्गा जी की पूजा करते थे, मम्मी को पता नहीं शास्त्र की विधि क्या है, कोई पढ़ा नहीं। तो अब लौकिक श्रद्धा सारे लोग इसी प्रकार से कर रहे हैं और पूजा करना चालू करिए। अब आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, कौन सा मंत्र कर रहे हैं?
हरे कृष्ण महामंत्र।
क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि शास्त्रों से भक्त
समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये सात्विक है, सात्विक श्रद्धा है, चल रही है, पूर्वजन के अनुसार चल रहे। फिर जब भक्तों को संग हुआ तुरंत चेंज हो गए। आप में से और किसी की पूजा ही नहीं करते थे? शर्मा रहे हैं आप किसी करते थे?
गुजरात की कोई देवी है।
हाँ, exactly, अब देखिए प्रत्यक्ष जो भगवत गीता में पढ़ रहे हो प्रत्यक्ष देख रहे हो कि नहीं देख रहे कि हाँ गुजरात की कोई देवी है, पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हो सकता हो वेदों में हो ही नहीं आपको, है कि नहीं? वो अपने मन से करना चालू किया, लेकिन जब भक्तों का संग प्राप्त हुआ तो क्या हुआ? तुरंत स्वीकार भी कर लिया। और तुम्हारा आप किसी की सेवा करते थे? हनुमान जी के करते। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष इस सभा में आप देख रहे हैं, भगवत गीता में जो भगवान बोल रहे हैं प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं, एकदम स्पष्ट देख रहे हैं। मैं किसकी पूजा करता था? किसी की नहीं। आप देख सकते हैं कि हम कहां से आए थे। तो हम किसी की पूजा नहीं करते, बिल्कुल इग्नोरेंट पड़े हुए थे। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि अपने अपने सत्व के अनुसार व्यक्ति पूजा कर रहा है, लेकिन अगर भक्त संग मिल गया तो वो अपने स्वभाव को जीत सकता है। ये बात मैं बोल रहा हूं, मतलब मैं नहीं बोल रहा, आचार्य जी बता रहे हैं। तो ये उन लोगों से भिन्न है जो पूरी तरह से असुर प्रवृत्ति के हैं, जिनका वर्णन अगले श्लोक में आएगा। आसुरिक लोग शास्त्र सुनने के बाद भी स्वीकार नहीं करेंगे। अब ये ही मैं अंतर दिखाने के लिए बोल रहा हूं। दो से चार श्लोक में जो है वो बताया, चौथा श्लोक कर रहे हैं, दो से चार में उन लोगों की बात कर रही है कि वो लोग शास्त्र की विधि केवल आलस्य वश त्याग देते हैं। अगर संग मिला तो वो शास्त्र स्वीकार करेंगे, उसकी विधि के अनुसार पूजा करने लग सकते हैं। जरूरी नहीं कि लगेंगे, ऐसा नहीं कि सारे दुर्गा जी की पूजा करने वाले हरे कृष्णा हो जाए। लेकिन यदि भक्त संग मिला या फिर वेदों का अपने बात सुनी किसी तरह से तो वो करने लग जाए। क्या स्पष्ट हो रहा है? यानी कि इन लोगों की संभावना है कि वह भगवान के भक्ति में आ सकते हैं, लेकिन जो घोर असुर हैं जिनको बिल्कुल शास्त्र मानना नहीं है, वह कुछ भी सुनने के बाद भक्ति नहीं करेंगे। वो श्लोक नंबर क्रमांक 5 और 6 में बताया जाएगा। क्या कुछ प्रश्न है या तो स्पष्ट है? आपको समझ में आ गया? ठीक है, तात्पर्य को पढ़िए। अनंत कृष्ण को केवल माइक पर पढ़ सकते हैं प्रभुपाद तात्पर्य।
इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय है।
ओके, पहली चीज तो यही बात है, हम सब लोग भगवान की पूजा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि शास्त्र से सुन लिए हैं। तो यानी आप फिर अपने आप को उसी पोजीशन में लेके जाइए जब आप भक्ति में आए नहीं थे, भगवान के बारे में कुछ सुना ही नहीं था। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस प्रकार से जो हमारे ही कैटेगरी में हो सकते हैं, यदि उनको बताया गया कृष्ण के बारे में, मौका दिया गया, तो फिर वो भक्ति में आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्र के निर्देश अनुसार भगवान ही पूजनीय है, ये बात है। यस,
लेकिन जो शास्त्र के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं।
जैसे कि कभी कभी आदिवासी लोग सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य देवता के रूप में नहीं, केवल सूर्य की पूजा कर रहे हैं, या जंगल के किसी पेड़ की पूजा कर रहे हैं, या किसी भूत प्रेत की पूजा करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार, बिजली की पूजा करते हैं, कभी बिजली चमकती ना उसको ही प्रकृति के कुछ वस्तुओं को देखकर पूजा करते हैं। पढ़िए,
जो लोग सतोगुणी हैं वे समानतया देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं।
इससे एक और इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, हमको लग रहा है कि हम या फिर अन्य लोग स्वतंत्र हैं। इस पे विचार कीजिए कि हमको लग रहा है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन क्या वो स्वतंत्र है? और अगर नहीं है तो किसके द्वारा वह नियंत्रित है? ये प्रश्न है। प्रकृति के गुण तो है ही, बिल्कुल सही है, लेकिन किस प्रकार से गुण उसको कर रहे हैं, ये एकदम सही उत्तर है। और इस चैप्टर के आधार पर उसे क्या कंट्रोल कर रहा है, उस बहुत इजी उत्तर है, लेकिन वेरी नाइस, स्वभाव कंट्रोल कर रहा है। और स्वभाव कैसे निर्मित होता है? सत्व के द्वारा। और सत्व को कौन प्रभावित करते हैं?
गुण।
ये पूरी चेन समझ में आ रही है आपको? गुण जो है वो सत्व को प्रभावित कर रहे हैं, सत्व से स्वभाव बन रहा है, स्वभाव के अनुसार व्यक्ति वैसे कार्य कर रहा है। अब आपको अगर उसको रिवर्स करना है, अगर उसे गुणों से मुक्त करना है, इस जरा इसको पे विचार कीजिए, क्या कोई व्यक्ति अपना स्वभाव तुरंत त्याग पाता है? दूसरे की बात छोड़ दीजिए कि हम अपना स्वभाव तुरंत त्याग पाते हैं, तो आप मेरी मदद कैसे करेंगे? मेरा स्वभाव है मैं संसारी कार्य करूंगा, तो मेरी मदद कैसे करेंगे आप? स्वभाव को जीतने में कैसे मदद करेंगे?
स्वभाव के अनुसार ही गाइडेंस देंगे।
फर्स्ट इज दिस, स्वभाव के अनुसार गाइडेंस दिया जाए कि उस स्वभाव को कैसे शास्त्र के कर्मों में प्रवृत्त किया जाए। जैसे एक भक्त लड़ाई करता था भक्तों से, तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हें लड़ाई करना है तो तुम जाके मायावादी सन्यासियों से लड़ाई करो। किसी की बहुत कर्म करने की रुचि है तो ठीक है, तुम जाके डोनेशन कलेक्शन करो, ये लाओ, प्रचार करो, इस मतलब प्रचार का मतलब इस तरह के कुछ कार्य करो जो बहुत रजोगुणी है, तो उस रजोगुण को वह उसमें लगा सकता है। प्रभुपाद जी इस जगह बोलते भी है कि सब कुछ हरे कृष्णा के द्वारा हो सकता है, लेकिन तुम लोग कर नहीं सकते, इसलिए मुझे अपना सर फोड़ना पड़ता है कि तुम लोग अलग अलग प्रकार की सेवा में नियोजित करो, है ना? क्या वो निरंतर लो कृष्ण नाम करो तुलसी से अपन अचिरात पावे तुम्हें कृष्ण चरण, लेकिन पहली लाइन गड़बड़ हो जाती है, निरंतर कैसे ले, ये दिक्कत, इतनी माइंड अनईजी है, तो उससे गुरु जो है अलग अलग प्रकार से सेवा लगाते हैं। तो ये हमें देखना है, किसी को भी आप प्रचार कर रहे हो आप देखो कि उसका स्वभाव क्या है, और फिर उसको सेवा में इस प्रकार से लगाइए ताकि वह कर्म जब कृष्ण को समर्पित होने लग जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा स्वभाव से। इतना आसान नहीं है, स्वभाव चेंज नहीं होता इतनी जल्दी, ठीक है? पढ़िए।
सत्वगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी है वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतया किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं।
सुंदर की और बात है, मैं एक और बात बोल रहा हूँ, विचार कीजिए कि हर व्यक्ति के जीवन में जीवन की कुछ सिद्धि है। यस, जीवन की कुछ सिद्धि है कि मैं इसको प्राप्त कर लूंगा तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा, है कि नहीं? ये देखते हैं कि नहीं? अब इसका आधार क्या है? बहुत उत्तर बहुत सिंपल है। इसका आधार क्या है? उस सिद्धि की जो धारणा है उसका आधार क्या है? जैसे कुछ लोग कहेंगे मैं आयुष बनना है मुझे, और कुछ लोग कहेंगे नहीं मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करनी है। आजकल लोग बोलते नहीं लेकिन फिर भी स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, विश्व विजय करनी है, उसका आधार क्या है? उसका सत्व। यस, और उसके अनुसार वह विभिन्न प्रकार के देवताओं की पूजा करेगा। जैसे भगवान बोलते हैं कांक्षतम कर्मणाम सिद्धि यजन्ते इह देवता। सुने हैं श्लोक? कहाँ का है?
चौथा अध्याय,
चौथे अध्याय में है कांक्षतम, या नवे अध्याय में श्योर नहीं, चौथे में, ठीक है। कांक्षतम
करके
सिद्धि कर्मजा, इस प्रकार की छोटी छोटी सिद्धियों के पीछे वो भाग रहे हैं और इसलिए देवताओं की पूजा करते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है जो मैं इसे समझ में आ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। 4.12 आप देख सकते हैं और यही बात यहाँ पे बता रही। थोड़ी थोड़ी सिद्धि के पीछे लोग भागते हैं, जैसे सांप के कांटे का इलाज कर देंगे।
ये देखिए,
कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ति इह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मज, है कि नहीं? आपने देखा है किस पर? और लोग कभी कभी लोग सोचते हैं देखो हरे कृष्ण मंत्र तो सांप के कांटे का इलाज नहीं कर रहा है, और इतना ये देखो छोटा सा मंत्र है और इसने सांप को कांटे का इलाज कर दिया, लेकिन जो माया रूपी सांप है उसका कांटे का इलाज कौन है? हरे कृष्ण मंत्र है, ठीक है। पढ़िए तो उन लोगों की श्रद्धा ऐसी छोटी छोटी चीजों पे हो जाती
है। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा।
ये बहुत खतरनाक है, इसे क्या कहते हैं? बहु ईश्वरवाद। ये बहुत खतरनाक है। वाकई मैंने एक व्यक्ति से सुना कि तुम किसी की भी पूजा करो सारे मंत्र एक बराबर है। आपने शायद कई लोगों से सुना होगा ये, हाँ, यथा मत तथा पद बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक है। वो सोचते हैं कि अरे छोटी सी चीज तो कृष्ण भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं, तो सब किसी की पूजा करो, ऐसा करके बोलते। पढ़िए,
यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी है अंधकार में है वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं।
ये समझ रहे किसी बारे में बात हो रहा है? ठीक है।
मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं।
लोग हैं गांव से, कोई आपने देखा है गांव में पूजा करते हैं? आपने देखा है? भूतों की पूजा करते हैं राजस्थान में काफी लोग रहते हैं। यस,
जहाँ पे पेड़ पे भूत होता है ना वहाँ पे लोग पूजा शुरू करते हैं।
यस yes.
और घर में भी जो मर जाते हैं उनका फोटो बैठा के पूजा करते हैं ताकि वो भूत बन के आए नहीं। परेशानी
नहीं, नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहे हमारे सही में वो एक हमारे ब्रह्मचारी थे
गुजरात में, सुरदान बोलते हैं, हुड़दान, हुड़दान बोलते हैं,
हुड़दान बोलते हैं। तो ब्रह्मचारी के पितर आके उसको परेशान किया करते थे कि तुमने मेरी पूजा क्यों छोड़ दी। फिर तो बोला मैं हरे कृष्णा करूंगी तो पूजा करूंगी। उनके घर में भी होता
था, मेरे घर के बगल वाले को मारता है खाने को, तो
खाने को
शरीर पे आ गया तो बोलता
है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर भूत आकर के खाने के लिए मांग रहा है हम दे सकते, तो भगवान जब खाने के लिए मांग रहे हैं तो क्यों नहीं दे सकते?
उसका शरीर पे आता
है शास्त्र की तरह। इस संबंध में बहुत अच्छी महाराज लीला बता रहे थे कि जब कृष्ण मक्खन चुराने जाते थे और कहीं कहीं जब मक्खन नहीं मिलता तो सब पूरा तोड़ देते थे, और फिर और उसके बाद वो साफ दे देते कि तुम्हें मिला नहीं यहाँ पे, सब जल जाए, तुम्हारा घर खत्म हो जाए। तो ऐसे ही महाराज बता रहे थे कि जिसके घर में, जिस गृहस्थ घर में भगवान को भोग नहीं लगता तो उसकी स्थिति ऐसे ही, भगवान उसको तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं रहे, और अगर भगवान कुछ भोग लगता है तो फिर घर में सब संपदा आती। यस,
हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उसे इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवतम में 4.3.23 में कहा गया है सत्वम विशुद्ध वासुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है।
होल्ड, अब मेरे मन में बहुत समय तक डाउट रहता है, अभी हम पढ़ रहे हैं सात्विक लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं, और अभी हम पढ़ रहे हैं सात्विक लोग वसुदेव की पूजा कर रहे हैं, तो ये कैसे आप रिजॉल्व करेंगे उसको?
संस्कृत में विशुद्धम लिखा है, तो सत्वम विशुद्ध
विश्व सत्व, तो हम लोग क्या विशुद्ध सत्व में है? विशुद्ध सत्वार से सुन सुन करके पूजा कर रहे हैं, यस दैट इज द पॉइंट। और वस्तुतः भक्त जितनी मात्रा में भक्ति में लगा है वह गुणों का संग नहीं कर रहा। जैसे मंदिर में सिंपल सी बात है, मंदिर में आप आए, हमारी चेतना चाहे कुछ भी हो लेकिन हम ऐसे स्थान में है जो निर्गुण है, नहीं मन निकेता तो निर्गुण है, भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं। उसका अनुभव आपको उतना होगा जितनी मात्रा में हमारी भक्ति बढ़ी रहेगी। भगवान के सामने, कृष्ण बलराम जी के सामने कोई भी आ रहा तो साक्षात भगवान के सामने आ रहा है, वो अलग बात है कि उससे कितना अनुभव हो रहा है। मैं हमारे पंचोगड़ा प्रभु को बोल रहा था कि भाई जैसे आपका छोटा बच्चा था जब, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो पापा के सामने, लेकिन पापा को तो पता है ना कि बच्चा मेरे सामने, कि बड़ी बात नहीं है। पापा का जो अफेक्शन है वो तो बच्चे पे बिखरता ही रहता है ना, आंखों के द्वारा होता है ना, आंख से देखते हैं प्रेम से, वो चाहते भी बच्चा कुछ बोले, बल्कि वेट करते रहते हैं। हम लोग इस बात को समझ नहीं सकते लेकिन क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम है, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो बोल नहीं पाता है, लेकिन पिताजी जरूर चाहते हैं कि कब वो पहला बार बोलेगा पापा मम्मी या कुछ भी बोलेगा।
एक बात और है कि जब इनोसेंट होता है,
माइक दीजिए,
बच्चा जब इनोसेंट होता है, जब नहीं जानता तो माता पिता का और ज्यादा प्रेम होता है,
यस
थोड़ा समझदार होने पर कम होता है, लेकिन जब नहीं जानता जैसे पतितों पर ज्यादा कृपा करते हैं भगवान, मतलब दूसरे से।
आप ऐसा कह सकते हैं, ये बात भी इसका एक ये एंगल है, लेकिन दूसरा एंगल ये भी है जब बड़े होकर के वो प्रेम से पिताजी की सेवा करता है तो पिताजी का और प्रेम बढ़ जाता है, ये बात भी है, लेकिन दोनों ही बात सत्य है। कलियों के पॉइंट से बात कर रहे हैं, सही बात है। एक्चुअली एक बहुत अच्छी बात ये भी है ना कि जैसे हमें बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, लेकिन जो वैद्य है वो जानता है अगर ये दवा लेगा तो ये ठीक हो जाएगा, ये बात पे हमको विश्वास होना चाहिए। इन छह औषधि माया नसी बारे लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी, कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महापुरुष स्वयं बोल रहे हैं, वो जानते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें, जब भगवान कोई उपाय बताते हैं वो अमोघ होता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब भगवान कोई उपाय बता रहे हैं तो वो अमोघ होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि भगवान जो उपाय बता रहे हैं वो कटता नहीं, वो अमोघ होता है। बीच में आपको बहुत सारी परेशानी महसूस हो सकती है, तो श्रद्धा बनाए रखें तो हम पार हो जाएंगे, जैसे कि समुद्र मंथन में हुआ था। बहुत सारी परेशानी आई, अंततोगत्वा अमृत भक्तों को ही मिला, ये ध्यान रखना चाहिए। ये बात आपको बहुत सिंपल सी लग रही होगी, क्योंकि भक्त के जीवन में ये एक गाइडिंग लाइट है कि भगवान जो बोल रहे हैं शास्त्र में लिख दिए हैं देखे, उसको पालन करते ही रहना, करते ही रहना। और इसीलिए यहां बोला जा रहा है कि जो लोग बहुत सारे कलमस निकले, जहर आया, लड़ाई झगड़ा हुआ, ये हुआ, कुछ भी हुआ,
यस
यस ठीक है। एक्चुअली देखिए इस चीज को हम लोग कितनी बार उदाहरण दिए हैं समझ नहीं पाते। जैसे आप कहेंगे कि ये क्या बिस्तर साफ है, तो आप कहेंगे हाँ, और आपकी क्लास के बाद आप साफ करना चालू कीजिए तो आपको समझ में आएगा अरे इतनी गंदगी कहां से। और ये हर भक्त के सब होता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए इस बात को। ये जितने भी भक्त छोड़ते हैं वो लोग क्या निष्ठा के स्तर पे छोड़ते हैं? अनर्थ निवृत्ति में फंस जाते हैं। आप ये बात समझ पा रहे हैं? इसके लिए भक्त संघ बहुत जरूरी है कि हमारे हमको समझ में नहीं आया, अंधकार है बहुत दिख रहा है, लेकिन भक्त संघ में आदमी करते 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 एक दिन पूरा पार हो जाएगा। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। वाणी आश्रम में एक बार मैं रुका था स्टूडेंट, मैंने पहले भी बताया था, एक ब्रह्मचारी मुझे बता रहे थे कि 9 साल तक उनका जब बिल्कुल सूखा रहा, लेकिन जो भी उनकी प्रवृत्ति थी, जो भी सेवा मिलती थी, बड़े उत्साह से करते थे कि हाँ मतलब हमें बहुत अच्छे से करना है। और 9 साल के बाद अब वो बता रहे थे कि इतना अच्छा जब उनको लगने लगा, कहने की मैं 32 से कम कर नहीं पा रहा। ये नहीं कि मैं 32 माला कर रहा हूँ, वो करना एक अलग बात है, लेकिन कर नहीं कम नहीं कर पा रहा, उसका अर्थ क्या है? इतना उसको रुचि मिल रही, भगवान रिवील कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि भगवान के बाद अब हो गए। खैर हम थोड़ा ड्रिफ्ट कर गए थे, वापस पॉइंट पे आ रहे हैं कि जो लोग वसुदेव की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, वह शास्त्र की विधि लेकर चल रहे हैं, इस कारण से वो निर्गुण अवस्था में रहते हैं। पढ़िए आगे थोड़ा सा।
तात्पर्य है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं।
मैं फिर से उस बात को रिपीट करना चाहता हूँ जो भी हमने चर्चा किया कि हम भले ही निर्गुण नहीं हैं, जो हमारे दशरथ प्रभु बोले कि हम लोग निर्गुण नहीं हैं, लेकिन हम लोग श्रद्धा रख रहे हैं उन लोगों पर जो लोग निर्गुण हैं, उनसे हम कह सकते हैं श्रद्धा उधार ले रहे हैं और श्रद्धा के अनुसार चल रहे हैं। इसके लिए ही कनिष्ठों को उत्तम अधिकारी भक्तों से सुनना चाहिए, इसीलिए प्रभुपाद जी के पुस्तकों को हमें रोज पढ़ना चाहिए ताकि हम जब रोज श्रवण करते रहेंगे तो फिर हमारी मति स्थिर रहेगी। अगर आपको याद हो हमने चर्चा किया था आध्यात्मिक बुद्धि बनी रहेगी। बढ़िया।
वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु की पूजा करते हैं।
एक सेकेंड, ये पंच देवताओं की पूजा करते हैं इसका अर्थ समझते हैं?
हाँ।
इंद्र, शिवजी,
सूर्य,
गणेश और एक और है जहां तक मुझे लगता है, मुझे याद आ रहा है, दुर्गा जी, पांच की पूजा करते हैं और वो कहते हैं कि वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं, उनको विश्वास किसी पे नहीं होता। उनके हिसाब से ब्रह्म ही पांच रूप में प्रकट है, आप किसी की भी पूजा कर लीजिए, पांचों की पूजा कर लीजिए, एक बराबर है। यस।
जो सिद्धांतीकृत विष्णु कहलाते हैं, विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास नहीं करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है।
एक बार लड़का मैं से प्रश्न किया कि भाई ब्रह्मा जी श्रेष्ठ, सॉरी शिवजी श्रेष्ठ है कि विष्णु श्रेष्ठ है, तो खैर मेरी बात समझ नहीं पा रहा था। फिर बोला देखो शिवजी विष्णु जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी शिवजी की पूजा करते हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। तो हमने कहा फिर कोई तो श्रेष्ठ होगा, तो उसका कहने का अर्थ यह था कि निराकार ब्रह्म से ही दोनों आए, अर्थात वे दोनों के प्रति अपराध कर रहा है। मैंने कहा चलो अब ऐसा करता हूं, मैं शिवजी बन जाता हूं, मैं कह रहा हूं शिवजी भगवान है, तो प्रमाणित करिए कि भगवान विष्णु भगवान नहीं है, सॉरी भगवान विष्णु भगवान है, वो फंस गया। वो जब मैं भगवान विष्णु के कृष्ण के बारे में बोल रहा हूं तो कह रहा शिवजी भगवान। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं शिवजी का पक्ष लेता हूं, शिवजी भगवान है, अब आप प्रमाणित करिए कि कृष्ण भगवान नहीं है, सॉरी कृष्ण भगवान है। तो उन लोगों का दोनों पर ही विश्वास नहीं। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? जब बोल रहे हैं कि ब्रह्म से शिवजी आए हैं, ब्रह्म से कृष्ण आए हैं, तो हम यही बोल रहे हैं कि शिवजी भी माया के विकार हैं और कृष्ण भी माया के विकार हैं, ये दोनों के प्रति अपराध। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? दोनों को ही वो नहीं मान रहे हैं, वो दोनों को ही मान रहे हैं कि हमें ध्यान देना चाहिए कि शिवजी भी माया के प्रकटीकरण नहीं है, यस, वो जीवात्मा नहीं है, तो दोनों के प्रति अपराध करते हैं। यस।
विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास ना करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है।
ये भी मैंने चर्चा कर लिया। पढ़िए।
इसी प्रकार वे मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं, अतः वे कभी कभी पांच देवताओं का वर्णन करते हैं।
छोटा सा पॉइंट ये है कि वो सोचते हैं कि ब्रह्म जो है वह जब सतोगुण का संग करता है तो विष्णु बन जाता है, ब्रह्म निराकार ब्रह्म जो रजोगुण का संग करता है तो ब्रह्मा जी बन जाते हैं, और तमोगुण का संग करता है शिव जी बन जाते हैं। पता नहीं कहां से इनको आईडिया आता है।
और अन्य प्रकार की किताबों में
माइक दीजिए,
बाहर की किताब अगर आप पढ़ें, क्योंकि मेरे पास घर में था तो मैं पढ़ता था, तो बाहर में यही कॉन्सेप्ट है,
वो लाइट दिखाएंगे, एक लाइट दिखाएंगे, पानी में ब्रह्मा जी शिव जी ऐसे वैसे करके निकल रहा
है, ये पांच में ही सर कॉन्सेप्ट घूमता रहता है, और ऑलमोस्ट जो बाहर के लोग है वो गीता प्रेस ही जो है वो सुलभ से है, तो आप कहीं पढ़ लो तो ये पांच में ही आप घूमोगे, इससे ज्यादा आप निकल नहीं सकते,
समझ
नहीं सकते। श्रीमद भागवतम भी पढ़ो, उसमें भी ये पांच कॉन्सेप्ट है उनके अंदर।
यस, बिल्कुल सही कह रहे, मिसकंसेप्शन। बढ़िया।
जो पूज्य है, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसीलिए वे अंततः समस्त पूजा पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं।
जैसे नदी पार करने के बाद व्यक्ति नाव को त्याग देता है, नाव की तरफ देखता नहीं। आप लोग ट्रेन में कभी चढ़े हैं? लास्ट टाइम जब चढ़े थे आप कब चढ़े थे? दिसंबर में चढ़े थे ना, तो याद है वो ट्रेन कैसी है अभी? नहीं, समझ में आ गया ना, वो ट्रेन को छोड़ती है बस जब तक, तभी तक मतलब है जब तक हमें वो अपने गंतव्य तक पहुंचना है।
सीट से,
सीट से मतलब था। अब आप बताइए कि क्या यही इस प्रकार से हम लोग भजन कर रहे हैं? हम सब लोग चाहते हैं कि एक दिन भगवान के धाम पहुंचे और हमेशा हमेशा के लिए भगवान की सेवा में लग जाए। ऐसा नहीं कि बस अब मुक्त हो गया, भगवान अपना अपना रहे, हम अपना अपना खाएं पिए, अपने तुम रहो अपने घर, हम अपना हम रहे अपने घर, ऐसा नहीं है ना। यस,
निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले लोगों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है।
ठीक है, लास्ट कंक्लूजन ये लगा कि ये लोगों की संग संभावना है कि वह अगर भक्त संग प्राप्त करें या वैष्णव का संग प्राप्त करें, वैदिक नियमों का पालन करने वाला का संग प्राप्त करेंगे तो सही ज्ञान प्राप्त करके सत्व को शुद्ध करके मुक्ति मिल सकती है। बस एक लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूं कि भक्त लोग अगर उत्सुक होकर के दूसरों को बताने के लिए हम लोग प्रयासरत ना हो तो कैसे मालूम चलेगा उन लोगों को, ये बात विचार कीजिएगा। इसीलिए भक्तों के लिए आवश्यक है शास्त्र को सीखना और दूसरों को बताना ताकि वो समझ सकें और फिर आप ही की तरह भी वैदिक नियमों का पालन करके सत्व शुद्ध करके भगवत प्राप्ति कर सके। स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।